ओम शांति। सभी एक हाथ की ताली बजा करके आदरणीय दीदी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमने सुना था कुछ लोगों को भगवान बड़े फुर्सत में बनाता है ना? कुछ लोगों को बड़ा जल्दी जल्दी बनाता है। हमारी गोपी दीदी को भगवान ने कैसे बनाया? बड़े फुर्सत से बैठ से, शिद्दत से बैठ करके नवाजा है और उसमें चार चांद लगाया हमारी दादी जानकी जी ने, सवारा है दादियों ने, दीदियों ने एक ऐसा अनमोल हीरा, वो भी हीरे की खान से निकलकर, कहां अफ्रीका क्या है जहां हीरे की खान होती है, वहां से निकल करके और लंदन कर्म भूमि और ये हमारी मधुबन प्यारी भूमि। आप सब ने उड़न तस्तरी का नाम सुना है ना? देखा किस किस ने हाथ उठा उड़न तस्तरी को? देखा नहीं किसी ने? सिर्फ सुना ही सुना है। चलो आज देखना। तो हम तो दीदी को उड़न तस्तरी के रूप में ही जानते हैं। आज यहाँ है, कल वहां है, कल वहां है, तो ऐसी उड़न तस्तरी बन करके देश ही नहीं, विदेश, विश्व भर के कोने कोने में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनी हुई हमारी गोपी बहन। गोपी बहन के नाम से मुझे गीत याद आता है, हर गोपी संग लगता है श्याम प्यारा। मेरा बहुत फेवरेट गीत भी है वो, गोपी बहन बहुत प्यारा, वो गीत आप ही के लिए बना। मेरा फेवरेट गीत है, गाएंगे लास्ट में। गीत रखा है हमने आपके लिए, स्पेशल रखा है। तो ऐसी हमारी दादी जानकी जी की जागीर, लंदन का तोहफा, नियम का नायब, नवीनता का जानने वाली, गुणों की खान, हमारी गोपी बहन को हम सभी सुनेंगे, क्योंकि दादी के अंग संग रहने का आपको विशेष सौभाग्य मिला है। दादी के मुख से हमेशा सच्चाई, सफाई और सादगी, दादी के मुख से हमेशा सच्चाई, सफाई और सादगी। एक पॉइंट और मुझे अचानक याद आया, मैं बताऊं, हम यहाँ आने से पहले हम बहनों की भट्टी हुई थी, तो एक बहन ने हमारे बीच में भट्टी के लिए कहा, दीदी हम लोगों में भी एक भट्टी का संकल्प होना चाहिए। मैंने कहा क्या बताओ, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया, उनका है ऑपरेशन सिंदूर, हमारा है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे हो, भट्टी में जरूर इसके ऊपर भी प्रकाश डाले। अचानक बैठे बैठे आपको देख करके मुझे संकल्प आया, इस भट्टी के माध्यम से अपने सिंस को भी कैसे हम दूर करें, इस पे भी अवश्य रोशनी डालेंगे हमारी आदरणीय गोपी बहन।
थैंक यू। हमारी दोनों दीदियां बहुत मीठी है, सलोचना दीदी, राधा दीदी, अच्छा संभाल कर रहे हैं ना सभी का, देखो ना। तो आप सभी को दोबारा मिलने का मौका मिला है। एक तो हम आपको कहाँ मिले थे, कटक में मिले थे, अभी मधुबन में मिल रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे बड़ी दीदी को देख करके बहुत खुशी हुई, कमलेश दीदी को देख करके, कैसे उड़ करके जंप करके पहुंच गए। आज का जो विषय है ये हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन तो नहीं कहेंगे, रग कहेंगे, हार्टबीट कहेंगे, क्योंकि जब हम छोटे छोटे बाबा के पास आते हैं तो हम, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता है उस समय, चालाकी नहीं होती है ज्ञान की, एक्सक्यूज निकालने की, होशियार जवाब देने की, हमारे पास केवल एक साफ और सच्चा दिल होता है। छोटे बच्चे के पास वही होता है ना, जो है जैसी बात है वैसे अपने माँ बाप को बताना। तो संबंध का ओरिजिनल फाउंडेशन यही है कि ये बाप है, ये माँ है, ए फ्रेंड है, सर्व संबंधों का साथी है। तो कुछ भी हो जाए, आखिर में छोटी बच्ची हूं ना, तो जो है जैसी है बात वो बाबा के सामने प्रत्यक्ष रूप में रखना, ये हमारी ड्यूटी है। तो पहले पहले फाउंडेशन है ऑनेस्टी का, कि अपने आप को एक छोटा बच्चा समझना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को ज्यादातर नॉलेजफुल समझेंगे, होशियार समझेंगे तो गए काम के, क्योंकि माया ही बीच में आकर के होशियारी दिखाएंगे। तो हमारा यही है, मुझे कुछ आता है या नहीं आता है बाबा को बताना है, बस। बाबा को बता दिया और जो जरूर है तो बड़ों को बता दिया और हमारा काम खत्म। फिर हम फ्री माइंड, हमने थोड़ी बेड़ा उठाया है विश्व को परिवर्तन करने के लिए। आपने उठाया है क्या? आपने तो स्व परिवर्तन का बेड़ा उठाया है ना, करेक्ट। विश्व परिवर्तन का काम तो उसका है। तो भगवान का काम जानना और हमारा काम जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम भगवान का पार्ट बजाते हैं, तो इसमें भी बहुत नम्रता।
सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता
मैं जो हूं जैसी हूं वैसे बाप के सामने खड़ी हूं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो सूक्ष्म कनेक्शन है बाबा के साथ वो बनी रहती है। कई बारी ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा योग क्यों नहीं लगता है, जितना मुझे बाबा से लेना है वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि सूक्ष्म संकल्प में या ड्रीम्स में या ऐसे कुछ कहां ना कहां कुछ डिसऑनेस्टी जरूर है, और आपने अब तक उस डिसऑनेस्टी को खोज के निकाला नहीं है, आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से चल रहे हैं। जो ऑनेस्ट रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा, जो ऑनेस्ट रहेगा वो सर्व का प्यारा रहेगा, जो ऑनेस्ट रहेगा उसके अंदर साइलेंस की शक्ति जमा होती जाएंगी, क्योंकि विवेक खाता नहीं है ना। आपने कुछ अपने पुराने संस्कार स्वभाव के आधार से किया है, चलो हमारा पुराना किचड़ा है, वो क्या कहते हैं, कमल फूल भी किचड़े से निकलता है ना, लेकिन वो किचड़े से मिक्स तो नहीं होता है, अलग रहता है ना। तो जब हम कुछ कार्य श्रीमत अनुसार नहीं करते हैं तो हमारा पुराना किचड़ा मिक्स होता है इसमें, चाहे हमारे संकल्प में मिक्स हो जाता है, हमारे भावनाएं में मिक्स हो जाती है, और उसके कारण फिर हम दुविधा में आते हैं, फिर बाबा से दूर महसूस करते हैं। रियलिटी है क्या? रियलिटी है कि करण करावनहार बाबा है ना, वो करा रहा है ना। हमारे में क्या ताकत है कुछ करने के लिए? है कुछ ताकत करने के लिए? इतना तो ज्ञान भी नहीं है। तो मैं जब सुनती हूँ ये बार ये किया वो किया, करा रहा है कौन? रियलिटी में रहना है, बस जितना भी लंबा लिस्ट बताए क्या क्या किया है, मुझे आज बैठे भी आप मुझे पूछो क्या किया है मुझे याद भी नहीं है, और मैं ऐसे इस जमाने को देखती हूँ, वो चीजें को देखती हूँ, अच्छा ये क्या हुआ, जैसे कोई और व्यक्ति ने कुछ किया है ऐसे लगता है हमको, क्योंकि ये चीज हमारी कैपेसिटी से बाहर है। तो जब अंदर की आंख बाप के ऊपर रहती है ना, तो बाबा कैसे काम कर रहा है, करा रहा है, वो आपको दिखाई देगा, और ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी में फिर आप टेंशन नहीं उठाएंगे। बैठा है ना ऊपर वाला, टेंशन क्यों उठाना है, चिंता किस बात की करनी है? तो फर्स्ट फाउंडेशन की ये बाबा के साथ एक ऐसा वार्तालाप, एक ऐसा संबंध बना रहे जिसमें एक स्पष्टता और इंस्टेंट कनेक्शन, जैसे बाबा शब्द मन में आए तुरंत कनेक्शन, क्योंकि वो सच्चे दिल से ही साहेब राजी रहता है, और बाबा ने हमको एक ऑर्डिनेंस दिया है, बच्चे मां मेकम याद करो, ऐसे नहीं जब टाइम मिले तब याद करो या दूसरे की याद में मुझे मिक्स कर दो या आपकी इच्छा है कि यादों में मुझे मिक्स कर दो, मां मेकम याद करो, ये कितनी बड़ी मंजिल है, माना और सभी बातें भूलनी है ना। अभी भूलने का पुरुषार्थ किसने किया है? नहीं किया है ना। तो ऑनेस्टी माना एक खुला मैदान मन और दिल में होना चाहिए, खुला साफ मैदान रखना चाहिए, ताकि बाबा को जो कराना है वो करावे। मुझे 2-3 दिन पहले की मुरली में मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, मुझे इतनी टच हुई, बार बार गूंजती रहती है मन में कि श्रीमत के डेप्थ में चले जाएंगे तो साइलेंस की अनुभूति होगी। देखो हम शुरू शुरू जब बाबा के पास आए, हम अपने आप को देह समझ करके कितने परेशान हो गए थे, समाज से परेशान, संबंध से परेशान, खुद के साथ परेशान। जब ज्ञान मिला मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, तो क्या महसूस हुआ? हल्कापन महसूस हुआ, और क्या महसूस हुआ? फ्रीडम महसूस हुई, हाँ मैं कौन हूं, मैं ये नहीं हूं। तो ये जो रस है, हमारी रियलिटी का जो रस है, ये सत्यता है, और इस सत्यता की स्मृति में रहना है तब हम ऑनेस्ट बन सकते हैं हमारे लाइफ में। समझ में आई? आप रियलिटी को साइड में कर देते हैं और ऑनेस्ट बनना चाहते हैं तो किस बात में आप ऑनेस्ट बनेंगे? सच्चे की, अरे देखो ना ये मेरी कमजोरी है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं, इसको हम सच्चाई नहीं कहेंगे, जिद्दीपना कहेंगे। हाँ। हम जब आए और शुरू शुरू में योग सिखाया था दादी ने, तो मुझे पहला अनुभव तो 8 साल की उम्र में यहाँ ही हुआ था, बाबा के कमरे में 70s में। मुझे, हम इंद्रप्रस्थ में थे और हमारे पिताजी ने हम सभी 5 बच्चों को वो मनोहर दादी के कमरे में ऐसे इशारा करके भेजा, फिर चंद्रमणि दादी जी आ गए। तो हमारे पिताजी ने बोला कि इन लोगों को योग सिखाओ। हम तो 2 मिनट के लिए भी स्थिर नहीं बैठ सकते थे। तो चंद्रमणि दादी ने बड़े प्यार से शुरुआत किया कि आप लोग खिलौने से खेलते हो? हमने बोला हाँ खेलते हैं। तो फिर जब दिन का एंड आता है तो क्या करते हो आप? आप उस खिलौने को ठीक ढंग से वापस अपने बॉक्स में डाल करके व्यवस्थित रूप में रख देते हो ना साइड पे? हाँ, खिलौने की जगह भी स्पेशल है। तो दादी ने ये बताया कि मन को भी ऐसे करना चाहिए, मन को जब चाहिए तब यूज करो, जब नहीं चाहिए तो अच्छी तरह से वाइंड अप करके रख दो साइड पे। सारा टाइम मंथन चले, सारा टाइम चिंतन चले, ये तो मन के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर हो रहा है ना। तो मन को चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो लव चाहिए और दूसरा लॉ चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को डिसिप्लिन करते हैं ना, प्यार से हम लॉ दिखाते हैं ना, ये रास्ता लेके चलो, यहां चलो, गुस्से में नहीं। फिर मनोहर दादी ने हमको एक प्रैक्टिस दिया, आप जाओ एकांत में बैठो। आज दिन तक भी मुझे जब तक ये टाइम नहीं मिलता है एकांत में ये काम करने का, तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया अंदर से, मुझे थोड़ी बेचैनी लगती है। तो मनोहर दादी ने बताया आप एकांत में जाकर के 1 घंटा बैठो, 4 प्रश्नों का रिविजन करो। ये 4 प्रश्नों खुद के साथ एक वार्तालाप शुरू करो और ये 4 प्रश्नों का डायलॉग खुद के साथ शुरू करो। 3 बारी डायलॉग इस 4 प्रश्नों की, 3 साइकल्स लगाने हैं और बीच में जो मन भटका तो दोबारा क्वेश्चन 1 से शुरू करना है और दोबारा वो 3 साइकिल शुरू करनी है। अभी 8 साल की उम्र की बच्ची को, हमारे भाई 7 साल का था, दूसरी बहन तो 5 साल की थी। तो मुझे पता नहीं ये बातें दिल में बहुत टच हुई। तो फिर मैं जाकर के यहाँ बाबा के कमरे में बैठी 10 बजे सवेरे, और 10 बजे तो कोई था नहीं, तो बिल्कुल ट्रांसलाइट के सामने थोड़ा बीच में बैठी। तो ये 4 प्रश्न जो दादी ने दिए थे, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, और मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं और मुझे क्या करना है। जैसे हम बाबा के कमरे में बैठे और मुझे बड़ी रुचि थी कि दादी ने होमवर्क दिया है करके दिखाना है, तो मैं बैठी और मैंने ऐसे डायलॉग शुरू किया अंदर से, मैं कौन हूं। जैसे शुरू किया तो फिर बिल्कुल बीच में एक बूढ़ी माता जी आ गई अपना प्लास्टिक बैग लेके, पूरा बाबा का कमरा खाली है और आकर के मेरे सामने बैठी, मेरे और बाबा के बीच में बैठी। तो मेरा तो बहुत जल्दी, मैं कौन हूं, वो तो परिवर्तन होकर, अरे ये कौन है, है ना। वो फिर मैं उठ करके, मैंने बोला सारा कमरा खाली है, यहाँ करके क्यों बैठी है। फिर मैं उठ करके साइड में चली गई, फिर मैंने दोबारा शुरू किया, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं। फिर बाहर से ट्रक आया ऐसे ऐसे जोर जोर से, और फिर मुझे भाई साहब का आवाज भी सुनाई दिया करे, अरे यहां से ट्रक लेके नहीं आओ। तो तभी मैं कौन हूं, किसकी हूं, धड़ाके क्या हो रहा है। ये ऐसे तो 10-15 मिनट तक तो चला। ये देखो ना, मन की एक हमारी आदत है डिस्ट्रैक्ट होने की, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से ही डिसऑनेस्टी पैदा होती है। कॉन्सेंट्रेशन से हमारी ऑनेस्टी की शक्ति बढ़ती है। फिर मैंने देखा, तो मैंने देखा 10:15 बज गए हैं, दादी ने हमको 1 घंटा दिया, अभी 1 घंटे के अंदर 15 मिनट तो ऐसे ही व्यर्थ चले गए हैं, तो क्या रिजल्ट लेके जाएंगे दादी के पास। तभी मैंने अपने आप को समझा करके मैंने बोला कैसे भी करके मुझे ये करना है, और मेरे अंदर एक प्रकार की फोकस या एक दृढ़ संकल्प पैदा हुआ, मुझे ये करना है। जैसे दृढ़ता मन में उत्पन्न हुई, वैसे मन की एकाग्रता शुरू हो गई। अभी और सभी बातें आउट, मैं अंदर गुफा में बैठ करके अपना काम कर रही हूं। और मैंने देखा जब दृढ़ता का फाउंडेशन होता है तो एकाग्रता इजीली आती है, जब दृढ़ता नहीं होती है तो बस इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में चले जाते, हवा खाते रहते हैं, ठीक है। तो वो दृढ़ता के आधार से मैंने दोबारा शुरू किया अपने अंदर का वार्तालाप, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं। और इतना अच्छा लग रहा था अंदर से, और एक टाइम ऐसा आया जैसे सेकंड साइकिल में शुरू किया तो बाबा ने बुद्धि पकड़ ली, और मैं कौन सी दुनिया में चली गई, लाइट की दुनिया में, आनंद की दुनिया में। मुझे कुछ भी भान नहीं था, कमरे का, शरीर का, कुछ नहीं। और मैंने जब आंख खोली, मैंने सोचा 2 मिनट पास हुए हैं, और मैंने जब घड़ी को देखा तो 11 बज रहा था। 45 मिनट तक मैं वहां पे उस अवस्था में बैठी थी जैसे बिल्कुल गुम। और ये जो रियलिटी का जो रस बैठा, मैंने सोचा ये रियल है, ये मेरा संसार है, ये जो बाहर की दुनिया, ये मेरा संसार नहीं है, ये मेरा संसार है। तो जब रियलिटी का रस बैठा, तब हर बात में हमारी तपस्या क्या है, हम उस रियलिटी में रहने के लिए एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करते हैं ना। ऑनेस्टी यही है, प्रयोग है ना हर बात की, कि हम इस रियलिटी को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। अरे भाई शांति से काम लेना, क्योंकि इस संसार में शांति है, इस संसार में प्रेम है, इस संसार में आनंद है, इस संसार में किसी का सोच नहीं चलता है, किसी के प्रति सोच नहीं चलता है, वो ऐसा है वैसा है, अनुमान नहीं चलते हैं, कल्पनाएं नहीं चलती है। ये इतनी मीठी दुनिया है अंदर की। तो जब तक ये रस नहीं बिठाया है तो आपका ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है क्या, क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि देवता तो अंदर बैठा है, बाहर नहीं बैठा है। तो मुझे ये चीज बहुत बचपन से एक फाउंडेशन बन गया है मेरे लिए, मैं कौन हूं, किसकी हूं, कहां से आई हूं, क्या करना। अभी ऐसे नहीं समझो कि जब हम बड़े होते हैं तो माया नहीं आती है, माया तो जोरदार आकर के अपना तूफान मचाएंगी, लेकिन जब ये रस बैठा होता है ना तो एक प्रकार का खुद के प्रति प्यार रहता है, बाबा के प्रति प्यार रहता है, तो आप वो संबंध नहीं तोड़ेंगे, खुद के साथ संबंध नहीं तोड़ेंगे, बाबा के साथ नहीं तोड़ेंगे, उस चीज को सहन करके पार करेंगे। आएंगी प्रभाव के कारण कई बातें आती है, तो योग का रस बिठाना बहुत जरूरी है ताकि हमको एक रियलिटी में रह सके कि रियलिटी वास्तविकता में क्या है। अपने आप को बस ज्ञान इतना सुना है, पढ़ा है, और उसमें खुद को धोखे बस बुद्धि ज्यादा चलाई, सोचा हम बहुत होशियार बन गए हैं, ज्ञान समझ में आए, रियलिटी तो में रह नहीं सकते हैं आप। रियलिटी क्या है? मैं बहुत बारी ये उदाहरण देती हूं कि आपको पता है कितना मैं और मेरा मेरेपन ने हमको धोखा दिया है, कितना हम धोखे में रहते हैं हमको पता नहीं है। आप जिस सीट पे बैठे हो आप कंफर्टेबल हो ना सभी। अभी आप उठेंगे, बाहर जाएंगे ब्रेक के लिए, ठीक है, वापस जब आएंगे तो कहां आएंगे? हाँ, अपनी सीट पे आएंगे। अच्छा, आप एक घंटे बैठे और अपनी सीट बन गई, मेरी सीट बन गई, इतना जल्दी मेरापन हो गया क्या? बहुत होता है ऐसा। आप ना सीट लेके आए अंदर, ना आपने सीट बनाई है, ना खरीदी है, ना कुछ भी, आपका है ही नहीं ये, लेकिन आधा घंटा बैठ गए और मेरी सीट बन गई। वंडरफुल है ये तो। अभी आप ये सेंटिमेंट आपके घर के लिए, मेरा घर है, क्या आपने खुद अपने हाथों से घर बनाया? क्या बनाया होता तो भी आपने लकड़ी अपने हाथों से बनाई है क्या? ये सब कुछ प्रकृति की गिफ्ट है, ये सारा संसार सर्व के सहयोग के आधार से चल रहा है। किसी ने ये बनाया, किसी के दिल से ये हॉल बनाए के दिया है किसी ने, सब सहयोग से हम बैठे हैं यहाँ पे। ये मेरापन कहाँ से आया? ये दादियों को, बाबा को इस रियलिटी को पता था, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा बच्चा, हाँ मदर, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। आत्मा किसकी है? हाँ, तो मेरा बच्चा थोड़ी बाबा का बच्चा है पहले, लेकिन अपने आप को अच्छी तरह से धोखा दिलाया है, नहीं मेरा बच्चा करके, क्योंकि मोह में डूबना है ना, तो पहली ऑनेस्टी चाहिए कि मुझे मोह जीत बनना है, पहले वो श्रीमत तो अपनाओ ना, क्योंकि मोह ऐसी चीज है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता है मोह को, और ही डूबना चाहता है उसमें, क्योंकि मोह बहुत मीठी होती है, मां की ममता मीठी होती है ना। हाँ मदर, नहीं तो रियलिटी में जाकर के खुद को ये धोखेबाजी बातों से पहले छुड़ाना है, ये है ऑनेस्टी। समझ में आई बात? मेरे में क्या प्रभाव हो रहा है, कहां से प्रभाव पड़ रहा है मेरे बुद्धि पे? देखो, बुद्धि का एक नाव होता है, नाव हिलेगी डूबेगी नहीं, लेकिन पानी जब नाव में आता है तो डूबने का डर होता है, तो वो प्रभाव का पानी आ रहा है नाव में, इसीलिए संशय उठ रहा है मन में। जो श्रीमत, जिसको श्रीमत की क्लैरिटी है, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, उसको कभी भी ये प्रश्न नहीं उठेगा, मैं क्या ये राइट कर रही हूं, रॉन्ग कर रही हूं। दुविधा में वो व्यक्ति कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ही थकावट होती है, उसमें ही निराशा होती है। फिर नंबर टू आती है आपके, आपका नंबर टू बन जाता है, थकान शुरू होता है, संशय शुरू होता है। चलो हम 5 मिनट प्रैक्टिस करें, ठीक है, रियलिटी की प्रैक्टिस करें। अभी आप अलर्ट होकर के बैठो और हम ये 4 प्रश्नों की कमेंट्री के रूप से करेंगे, आप बस ऐसे नहीं कि दिमाग से इस चार प्रश्नों का जवाब देना है, लेकिन आत्मा का आवाज उसको निकालो। एक आत्मा के साथ डायलॉग हो रही है साइलेंस में, साक्षी होकर के देखो क्या अंदर से निकल रहा है। ठीक है, चलो अभी एक गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ो। बिल्कुल अपना अटेंशन ध्यान बाहर से अंदर के ओर लेके चलो। चलो हम एक अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? और डीप चले जाओ। मैं कौन हूं? मैं किस कहां से आई हूं? मैं मुझे क्या करना है। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? एकदम एकाग्रचित होकर के अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर के शांति की शक्ति की किरणें फैलाए। क्या महसूस हुआ? एक सेकंड में संसार परिवर्तन हुआ। क्या महसूस हुआ? बाबा का सितारा, बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं। और क्या महसूस हो? लाइट एंड माइट, साइलेंस, रियलिटी है अपनी रियलिटी में, है ना? अभी इसके लिए तो हम आए हैं ना? अभी आपको कौन सा संसार अच्छा लगता है? ये वाला लगता है ना? अच्छा, देखो एक बारी इसका रस बैठ गया है ना, तो बार बार आप टाइम निकाल के अंतर्मुखी होकर के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं जब मीटिंग में बैठी होती हूँ या ऐसे ही लोग सुनाते हैं, मैं यही अंदर मेरा धुन चलता है, क्योंकि मुझे अपने संसार में रहना है ना, रियलिटी में रहना है। तब जाकर के निरंतर बाप के साथ कनेक्शन बनी रहती है। इस संसार में तो कितनी फ्रीडम है, महसूस किया ना? हल्कापन, फ्रीडम, जैसे आप और बाप दोनों साथ में हैं। अभी आपने देखा, आपने अपनी बुद्धि से काम लिया ना? मैंने केवल चार प्रश्न पूछे, लेकिन आपने अपने बुद्धि को काम करके सहर कराया ना, अंदर जाके, बाबा के पास जाके, ऊपर जाके। ये बुद्धि की एक्सरसाइज, उससे बुद्धि हेल्थी रहती है, किचड़े से दूर रहती है। ये जब रियलिटी की एक्सरसाइज नहीं होती है ना, तो बुद्धि और बातों में चली जाती है। पता नहीं कोई भाई आया था मेरे पास कल, 11 साल ज्ञान में है, इतने बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने बोला, मैंने सोचा 11 साल में क्या किया है आपने, कितने सारे यूट्यूब वीडियो देखे हैं, यूट्यूब वीडियो का नॉलेज इतना जमा किया है कि इधर कॉन्स्टिपेशन है, श्रीमत क्या है, बाबा क्या बोल रहा है, वो कुछ पता नहीं है उसको। इसीलिए हम बोलते हैं प्लीज आप लोग ये झंझट बंद करो। अभी जो चाहिए बाबा के मुरली में है। नी दादी को बाबा ने, जब दादी जी आई थी बाबा के पास, साकार बाबा के पास, तो दादी ने बाबा को बोला कि बाबा हम लेट आए हैं तो हम क्या पुरुषार्थ करें, तो बाबा ने बोला 12 बारी मुरली पढ़ो। तो दादी तो 12 बारी मुरली पढ़ती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने लिए नोटबुक लेकर के हर मुरली से 10 पॉइंट निकाल के 10 दिन में 10 बारी 10 पॉइंट का रिवीजन करती थी। इतना बुद्धि को ट्रेनिंग देना है कि हमारे दिमाग में, बुद्धि में बाबा की बातें के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप ये संसार में रह सकते हैं, रियलिटी में रह सकते हैं। तो दूसरी एक निशानी है, जो सच्चे दिल वाला होता है उसका कभी कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाता है। 8 आना भी 800 के बराबर है, उसको एक एक चीज की वैल्यू रहती है। कभी कभी हमारा व्यर्थ केयरलेसनेस के हिसाब से, अनबेलेपन के हिसाब से, अरे मैं चाहती नहीं थी लेकिन ऐसे हो गया ना, अटेंशन नहीं दिया ना। मुझे याद है जब गुलजार दादी को पहली बारी पानी में लंग्स में पानी शुरू हुआ था, तो वो उस समय में छोटी मोहिनी बहन ने शरीर छोड़ा था, 2015 में ऐसा कुछ था। तो हम केवल भारत में 4 दिन के लिए आए थे अंतिम संस्कार के लिए, और मैंने सोचा कि मैं वापसी जैसे मधुबन से वापस जाओ अहमदाबाद होकर के दादी जी को मिलके जाओ। तो दादी जी तब स्टर्लिंग हॉस्पिटल से बाहर निकले थे और रूम में बैठे थे, तो फिर नीलू बहन इशारा दिया आप जाओ बातें करो, थोड़ा बहलाओ दादी को। तो हमने सोचा दादी को किस तरीके से बहलाए, दादी को तो दुनिया की बातें पता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो हम बाबा की बातें पूछे। तो मैंने दादी को पूछा कि दादी इस हालत में, क्योंकि वो खांसी भी खा रहे थे तो सुनाई देता था वो पानी लंग्स में, तो इस हालत में क्या बाबा आते हैं? तो दादी ने बोला हाँ आते हैं। तो मैंने बोला तो क्या करते हैं जब आते हैं? तो मेरे मन में तो ये सोच चला कि शायद बाबा माँ के रूप में आया होगा, थोड़ा प्यार देता होता बच्चे को, या दिलाराम के रूप में थोड़ा उनको आराम देते थे। तो दादी जी साइलेंस में जाकर के बोला बाबा चेकर के रूप में आता है। चेकर माना चेक करता है, क्या चेक करता है, आपकी तबीयत चेक करता है? तो दादी ने बोला बाबा आते हैं सब कुछ देखता है, लेकिन ध्यान को चेक करता है कि बच्ची का ध्यान कहाँ है। आप सोचो इतनी बड़ी हस्ती, छोटी नंदी, फिर भी नो एक्सक्यूज, उसका खुद का कर्म का हिसाब किताब है, लेकिन बच्ची का ध्यान कहाँ है, बाबा के ऊपर है या कर्म के हिसाब किताब के ऊपर है? ये है ऑनेस्टी। कुछ भी हो जाए हमारा ध्यान बाबा से हटना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? ऐसे नहीं कि दादी वहां बैठे थे, दादी जी पूछ रहे थे मेरे से क्या हुआ है, ये कब पूरा होगा, कैसे, कितना कष्ट हो रहा है, देखो ना, कुछ भी नहीं। बाबा आते हैं चेकर के रूप में ध्यान चेक कर रहे हैं, बच्ची का ध्यान कहाँ है। ये टेस्ट पेपर अंत तक मिलेगा सभी को, ये बहुत ऊंची मंजिल है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सच्चे दिल का प्यार, जिसके साथ प्यार होता है वो नजरों में ही रहता है। फिर मैंने दादी को पूछा, दादी आजकल तो सेवाओं की विस्तार तो बहुत हुई है, तो सभी पूछ रहे हैं क्या हम सेवाओं को थोड़ा साइड में छोड़ करके ज्ञान योग में ही सारा दिन बैठे रहे, ज्ञान योग ही करते रहे। दादी शांत हो गई, कहते चारों तरफ ध्यान रखना है, माना चारों सब्जेक्ट में ध्यान रखना है, एक संतुलन बना रहे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा पद का आधार है कि चारों सब्जेक्ट में पास मार्क है। ऐसे ही थोड़ी कि हम एक सब्जेक्ट में पास मार्क ले लेंगे दूसरे सब्जेक्ट में ले। और क्या है एक ब्राह्मण जीवन का एक, मैं कहूंगी एक छब्बी क्या है, हमारा श्वासोश्वास हम एक सेवाधारी है, हम विश्व को, चलो स्व को परिवर्तन औरों को उठाने के लिए आए हैं, इसलिए तो बाबा के मददगार बने हैं ना। तो पहली सेवा है स्व की सेवा, स्व को उठाना है। हमारा खुद के बैंक में कितने जमा है, कितने गुण जमा है, कितना शक्ति जमा है, वो कभी एसेस किया है, देखा है? तो पहला ये असेसमेंट करो। फिर दूसरा है कि समाज की सेवा, विश्व की सेवा, जो आपके संबंध संपर्क है उनको कितना तक ज्ञान रोशनी दी है आपने, कहां तक बाबा का परिचय दिया है। चलो बड़ी बड़ी सेवा की बात तो छोड़ो, लेकिन आसपास आपके संबंध वाले, संपर्क वाले, चाहे काम पे चाहे जो भी कनेक्शन वाले, कहां तक रोशनी फैलाई है। तीसरी बात है यज्ञ सेवा, यज्ञ में कहां तक बीज बोया है, मन तन धन कहां तक सहा किया है यज्ञ में। और चौथा सब्जेक्ट है मनसा सेवा। अभी आप चार, ये चार प्रकार की सेवाओं में बिजी रहेंगे तो टाइम वेस्ट कहां से होगा, मुझे बताओ। आजकल तो कई ऐसे यूथ ब्राह्मण आते, अरे बहन जी हमको पता नहीं हम क्या करें। मैंने बोला क्या क्या करें, इतना सारा ढेर ज्ञान है, इतना सारा काम बाबा ने दिया है, प्रोजेक्ट बना करके अपने आप को खड़ा कर दो ना, आप क्या चाहते हो। कुछ संसार में पद पोजीशन नाम शान ये चाहते हो क्या? तो एक बहुत ही एक हमको एक अंदर खोज करके हमारी लाइफस्टाइल क्या है वो एक बहुत डेप्थ में देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रकृति के साथ भी ऑनेस्टी होनी चाहिए ना, ड्रामा के साथ वफादारी और ईमानदारी, ये तो हमने दादियों में देखा है, खास करके दादी जानकी जी में। कुछ भी होता था ड्रामा की बातें को टालती नहीं थी दादी, और जो सीक्वेंस में ड्रामा कुछ बात को लेके आता था ना, वो ही सीक्वेंस में वो हैंडल करती थी वो बातें। मुझे याद है एक सीन, हम ऑक्सफोर्ड में थे तो दादी जी अपने कमरे में बैठे थे और हम किसी के साथ मिल रहे थे, तो हम आए, कमरे का दरवाजा खुला था तो हमने सोचा ठीक है दादी किसी को मिल रहे हैं, तो मैं कमरे के बाहर ऐसे खड़ी रही। फिर पांच सात दादी ने मुझे देख लिया था और मैं ऐसे ही कमरे के बाहर खड़ी रही। फिर क्या हुआ, पांच सात मिनट के बाद कोई एक रिट्रीट चल रही थी ऑक्सफोर्ड में, तो वहां की एक बड़ी बहन आई, ठीक है, जल्दी 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 ऐसे ऐसे करके आई, बिल्कुल कमरे में घुस गई, दादी अभी मीटिंग शुरू करनी है, वो करना है, अभी अभी चलो हमारे साथ। उसने देखा मैं वहां खड़ी हूं लेकिन इग्नोर किया और अंदर चले गए। दादी ने उसको बड़े प्यार से, तुम इधर बैठो गोपी, तुम इधर आओ, मुझे अंदर बुलाया। और ये बहन बोली, दादी अभी नहीं टाइम है, अभी सेशन शुरू करना है, चलना है। चुप, बैठे रहो साइड में, इधर आओ, क्या काम है? दादी बस एक मिनट का, क्या काम है? पूरा ध्यान दे करके दादी ने मेरा 1-2 मिनट के अंदर काम निपटा दिया। मैंने देखा, ये देखो ना, हमारे संबंध में वफादारी रहना, ईमानदारी रहना, माना कोई भी कार्य पूरे ध्यान से करना है। हमारा काम जब काम चलाओ होता है ना ऊपर ऊपर से, तो ये डिसऑनेस्टी की एक निशानी है। लेकिन दादी उस समय मुझे बुला करके, मुझे बस मेरे तरफ देख करके 100% ध्यान था मेरे पर। 2 मिनट में मेरा काम निपटा के शांति से दादी गई सेशन में, लेट भी नहीं थी उस समय। हम क्या करते, नहीं 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 इसको छोड़ो, ये साइड में छोड़ो, ये काम पहले करो, ये करो, वही करो, ऐसे ऐसे, ये क्या है, इसको रॉयल्टी कहेंगे क्या? ये कोई सच्ची दिल वाले की निशानी नहीं होती है। सच्चा माना जो इशारा ड्रामा ने मुझे दिया है उसको पूरा ध्यान देकर के पूरा कंप्लीट करना है। समझ में आई बात? तब आपको संबंध संपर्क में प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। आपके प्रॉब्लम्स आपके ही क्रिएशन है, क्योंकि आप जब किसी की बात सुनते हो या कोई सिचुएशन में आते हो तो आपका ध्यान अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि इच्छा है, कुछ है, आपको कुछ और चाहिए। तो ऑनेस्टी की परिभाषा बहुत डीप है। स्वच्छता और सच्चाई दोनों पवित्रता सत्यता के टुकड़े हैं, और ये हमारे बाबा के साथ एक संबंध का एक फाउंडेशन है। बाबा एवर प्योर है। दादी लास्ट में, पता है ना, दादी को 4 बातें की नफरत बहुत थी। मैं बहुत कड़ा शब्द यूज करती हूँ। दादी कहती थी झूठ बोलना, आजकल तो झूठ बोलना एक धर्म हो गया है। एक एक सेकंड पे अपने को बढ़ावा करने के लिए झूठ, झूठ पे झूठ पे झूठ, और इतने झूठ बोलते हैं कि वो व्यक्ति वो झूठ भी सच समझ लेती है कि खुद मैं क्या हूं, मैं क्या कर रही हूं वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बस मेरा नाम औरों के सामने बड़ा रहे, मुझे जो भी जितना भी झूठ बोलना है झूठ बोल दो। ये क्या है? आप कैसे ईश्वर के नजदीक आ सकेंगे? कैसे योग लगेगा? दूसरी बात चोरी, बिना पूछ के छुप करके कुछ लेना, चाहे पैसा की चोरी, चाहे एक कटपन की चोरी, कटपन की चोरी भी हो, लाखपन की चोर होता है। नहीं, दादी हमको बता रही थी एक बारी कि यहाँ पे जो ईशु दादी की ऑफिस में है ना, तो बाबा बैठे थे, ईशु दादी बैठी थी, तो वो पोस्ट खोल रही थी ईशु दादी बाबा के लिए। तो दादी कुछ काम के लिए आए थे, तो ऐसे जब बाबा के सामने खड़े रहे और बाबा को बता रही थी, फिर बाबा कुछ पढ़ रहा था, तो दादी की ऐसे ध्यान इधर उधर गए, तो बाबा ने देखा दादी को, बच्ची आंख से क्या चोरी कर रही हो? क्यों आंख इधर उधर जावे? क्यों कोई कुछ चीज में फंसे? समझ में आई? रॉयल्टी क्या है? ऑनेस्ट सोल इज वेरी रॉयल। उसका ध्यान, उसकी दृष्टि ऑलवेज खुद के ऊपर, ऐसे नहीं इधर उधर ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये भी एक प्रकार की चोरी है। फिर तीसरी बात ठगी, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बिजनेसमैन भी बहुत ठगी करते हैं ना बिजनेस में। हाँ, आजकल तो देखो ना सब्जियों में क्या करते, इंजेक्शन डाल करके, क्या क्या आप क्या सब्जी खा रहे कुछ किसी को पता भी नहीं होता है, ठगी है सब कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली आदत है निंदा, किसी की निंदा करना। दिस इज द वर्स्ट। चलो आप बाहर से किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मन में तो चल रही है ना किसी के प्रति निंदा। और फिर एक तरफ से आप बोले मैं तो सच हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन निंदा अंदर मन में चल रही है किसी के, ये ऐसा है वैसी है वैसा है वैसा है, वैसा है। इसको सच्चाई कहेंगे क्या, इसको सफाई कहेंगे क्या? तो ये चार बातें से अपने आप को छुटकारा दिलाओ, झूठ, चोरी, ठगी और निंदा। तो इस बारी इस भट्टी में ये चार बातें को त्याग करना है दृढ़ संकल्प लेकर के, तब आपकी जीवन में एक इतनी खुशबू, मीठी खुशबू बनेगी सच्चाई की, सफाई की। और सादगी तो ये चीज है कि जो मुझे आवश्यक है वही लेना चाहिए ना, ऐसे नहीं गरीबी में रहना है या बहुत साहूकारी में रहना है, जो चीज आवश्यक है उस अनुसार, आवश्यक नहीं है तो क्यों। चलो समय की सीमा को देख करके यहाँ पे विराम करते हैं, ठीक है ना, सभी को ठीक लगा? ठीक है, अभी रियलिटी से सच्चाई में रहना है, साफ रहना है, सिंपल रहना है, तब बाबा की लाइट माइट आपके द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, लोगों को आकर्षण होंगे, अरे इनको चलाने वाले बनाने वाला कौन है। ओके,
ओम शांति। थैंक यू दीदी कह रहे हैं, हमें थैंक्स कहना चाहिए, दीदी को कहना चाहिए हम सब की तरफ से दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। आप सब में से किसी ने दादी जानकी जी को देखा नहीं देखा? जिसने नहीं देखा है, नहीं देखा है, आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था दादी जानकी जी की झलक दीदी के द्वारा। हम सब ने मुरली में, साकार मुरली में सुना संघ का रंग, तो वास्तव में संघ का रंग हम सिर्फ वही सोचने को, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, उस संघ के रंग के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन श्रेष्ठ संघ का रंग क्या होता है? दादी ने एक एक को अपने समान बनाया, हमने दादी के साथ रहने वाले एक एक बहनों को देखा है, पूरा छाप अपना डाल करके गई है, उसी की रूपरेखा हम सब ने गोपी बहन के द्वारा देखा। इतनी सुंदर ऑनेस्टी की जो परिभाषा बताई, कैसे हम अपने आप को ऑनेस्ट बनाए अपने से, छोटे से, न जाने कितनी बार मैं कौन हूँ सुना है, लेकिन आज के मैं कौन हूँ का अनुभव कुछ अलग ही था, वो पहले जैसा ही था। ये ऐसी पहली है मैं कौन हूँ के अंत तक चलने वाली है। आज आपने इतना सुंदर अनुभव कराया गोपी बहन, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने कितनी बार मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, सुना है ना? आज जो डीपनेस, जो डीप जा करके हमने अपने आप को रियलाइज किया, फील किया, उसको फील किया ना हम सब ने, तो बहुत ही इस भट्टी का एक जैसे कि एक छाप कहेंगे हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। फिर से दिल से आपका धन्यवाद।